SBS हिंदी हमारी कहानियां फेसबुक पर।
ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरा विश्व समझता है कि बढ़ता वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है। दुनिया के विभिन्न देश वायु प्रदूषण के खतरों को समझते हुए हरित ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और अपनी भविष्य की नीतियों में बदलाव कर पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में लेबर पार्टी ने इलेक्ट्रिक कारों को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें उद्योग के लिए $250 मिलियन की वित्तीय सहायता की बात भी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसके खिलाफ खुलकर बोला था और इसका उन्हें लाभ भी मिला था। लेकिन अब सरकार का कहना है कि तकनीक तेजी से बदल रही है और इस दशक के अंत तक 1.7 मिलियन इलेक्ट्रिक कार सड़कों पर दौड़ सकती हैं। जानकारों का मानना है कि क्योंकि नई नीतियों में टैक्स छूट और सब्सिडी की कमी है, इसलिए हो सकता है कि एक बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया निवासी इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प ना चुने। उद्योग के लिए निराशा भरी खबर जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि एक नीति बैकफ्लिप नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उनका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के बाजार में एक नया विकल्प खड़ा करना है।
Because Labor wants to tell everybody what to do. They love telling people what to do, what cars to drive. I think Australians have had enough of governments telling them what to do, frankly. 2 years of governments having to tell people what to do. And it's not something I think Australians want to see more of in the future. So, you know, I don't have a problem with electric vehicles. I just have a problem with governments telling people what to do about what vehicles they should drive and where they can drive them.
फेडरल सरकार ये मानती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा और इसके लिए आधारभूत संरचना की बहुत जरूरत है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए $250 मिलियन की रणनीति जारी की है, ताकि अधिक लोगों को पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों से इलेक्ट्रिक कारों की तरफ आकर्षित किया जाए। लेबर पार्टी की नीतियों के हिसाब से 2030 तक सभी नई कारों में से 50% इलेक्ट्रिक होने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके खिलाफ बोलना प्रधानमंत्री के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ था।
And I'll tell you what, it's not gonna tow your trailer, it's not gonna tow your boat, it's not gonna get you out to your favorite camping spot with your family. Bill Shorten wants to end the weekend when it comes to his policy on electric vehicles, where you've got Australians who love being out there in their four-wheel drives. He wants to say see you later to the SUV.
हालांकि अब प्रधानमंत्री के बोल बदल गए हैं और वो कुछ अलग संदेश दे रहे हैं।
Well, I think as these new technologies come into place, and they'll happen over time. This is not, you know, one day all petrol vehicles shut down and electric vehicles start up the next day. I mean, that's the sort of thing the Labor Party likes to talk about. I mean, this happens over time, and allowing consumers to lead this process, I think, is really important.
वो इस बात पर कायम है कि उन्होंने चुनाव से पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के खिलाफ प्रचार नहीं किया।
But I didn't. That is just a Labor lie. I was against Bill Shorten's mandate policy trying to tell people what to do with their lives, what cars they were supposed to drive and where they could drive them. I don't agree with that. I still don't agree with it. And our policy takes a very different approach. Labor loves interfering in your life. They love telling you what to do. They don't like our plan because it doesn't tax you and doesn't force you to do anything.
आलोचकों का कहना है कि ये तर्क एक समस्या हो सकती है। लेबर पार्टी की नीतियों के अनुसार पहले पेट्रोल और डीजल कारों के लिए उत्सर्जन क्षमता मानक लागू करने की योजना बनाना था। उसके विपरीत सरकार की नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए कोई आधिकारिक लक्ष्य शामिल नहीं है, लेकिन ये परियोजना जरूर है कि 2030 तक बेची जाने वाली सभी नई कारों में से 30% या तो इलेक्ट्रिक होंगी या फिर हाइब्रिड। इसी के साथ ईंधन उत्सर्जन के लिए कोई उपभोक्ता सब्सिडी, टैक्स प्रोत्साहन या न्यूनतम मानक भी नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेयाद जाफरी का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहुंच से बाहर कर देगा।
We'd expect to see quite a lot more in there. In particular, that would be two key policies like fuel efficiency standards that force car companies to bring their latest and greatest technology to Australia, making it available to our customers. And then rebates to make electric vehicles cheaper for people to buy. Unfortunately, the federal government's ruled both of those out.
लेबर पार्टी ने योजना पर प्रतिक्रिया दी है। इस विषय पर पूर्व विपक्षी नेता बिल शॉर्टन ने कहा,
Listen, imitation is the sincerest form of flattery in politics, and It is correct that I did propose that we put charging stations on the national highways. Australia is in danger of becoming an automotive third world. The rest of the world is now sending to Australia the cars that no one else in the world wants. The rest of the world's moving to electric vehicles. I get Labor proposed it. Mr. Morrison must read my policy book at night time for ideas.
विपक्ष के नेता एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि ये ऑस्ट्रेलिया को बाकी दुनिया से पीछे रखेगा।
We need to make sure that we don't continue to fall behind. Australia last year had under 2% of new vehicle sales were electric vehicles. In Denmark, in Norway, the figure was 70%. In Denmark, it was double digits. In the United Kingdom, it was 15%. I went to a conference as Transport Minister way back in 2009 in Japan, where every motor vehicle manufacturer was saying that they're not doing any research into internal combustion engines. It was all about electric vehicles and clean energy vehicles.
आपको बता दें ये घोषणाएं उस वक्त की जा रही हैं जब जलवायु परिवर्तन के बारे में विश्व के नेता आगे आकर एकजुट होने की बात कर रहे हैं। SBS न्यूज़ से शुभा कृष्णन और सोफीजा पेट्रोविक की रिपोर्ट को हिंदी में पेश किया है विकास सवाना ने।
SBS हिंदी हमारी कहानियां फेसबुक पर।